SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों को न केवल सील कर दिया है, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपए की देनदारी भी निकाल चुका है। आयकर विभाग ने शनिवार के दिन कांग्रेस को नया नोटिस थमाया, जिसमें साल 2014 से 2017 तक 1,745 करोड़ रुपए की देनदारी बताई गई है। कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की साजिश करार दिया है, ताकि वह चुनाव ही न लड़ पाए। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि इस हिसाब से भाजपा की देनदारी 4,600 करोड़ रुपए बनती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले में खामोश है।
इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि उनको कांग्रेस की ये कमी नजर आती है, लेकिन ये 4,600 करोड़ की जो पेनल्टी बीजेपी से लेनी चाहिए, why is it not looking at these violations done by the BJP?
भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया।
कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो संविधान और देश के कानून के ऊपर है, और उनको लगता है कि मैं टैक्स की चोरी करूं, फिर झूठ बोलूं और विक्टिम बनूं। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर, जो आम आदमी को तो टैक्स भरना पड़ता है, पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्पेशल वीवीआईपी कैटेगरी में रखती है, तो टैक्स की चोरी करने के बाद जब पकड़ी गई चोरी, तब उनको टैक्स नहीं भरना है। सवाल ये पैदा होता है कि जब 2021 में नोटिस आई थी, तब उस समय पर आपने उसको चैलेंज करने में देर की, आपने जब चैलेंज किया, चाहे वो सीटा में हो, अपीलेट ट्राइब्यूनल में हो या हाईकोर्ट में हो, कोई राहत नहीं मिली। 13 मार्च 2024 को जब हाईकोर्ट पहुंचे, तब हाईकोर्ट ने आपसे कहा कि इतने वर्ष आप सो क्यों रहे थे।
इस बीच आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पूछताछ की। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह ने इसे भाजपा द्वारा दिल्ली सरकार को पलटने की साजिश बताया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री जेल में हैं। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली में इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों ने भाग लिया। उन्होंने मोदी सरकार पर सरकारी एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ लगातार गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और इस रवैये को प्रजातंत्र के लिए बेहद घातक बताया। अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों की तुलना मैच फिक्सिंग से करते हुए जनता को देश बचाने के लिए मोदी सरकार को हटाने का आग्रह किया।
मैच फिक्सिंग शब्द सुनाया आपने, जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीद कर, कैप्टन को डरा कर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है।
दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनता के बीच पहली बार भाषण देते हुए अपने पति का जेल से भेजा संदेश पढ़ा। इस संदेश में श्री केजरीवाल ने देश बचाने के लिए जनता से सब भेद भुला इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होने की अपील की। जहां एक ओर इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को भ्रष्टाचारी ठहरा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभाओं में स्वयं को ईमानदार और पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं।
मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है, एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है।
कई राज्यपालों द्वारा राज्य सरकारों के विधेयकों को मंजूरी ना दिए जाने की बढ़ती घटनाओं पर क्षोभ व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने राज्यपालों को सलाह दी है कि उन्हें संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा आयोजित सम्मेलन में दिए भाषण में उन्होंने कहा, राज्यपाल एक गंभीर संवैधानिक पद है और राज्यपालों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए ताकि मुकदमेबाजी कम हो।
दिस इज नॉट अ हेल्थी ट्रेंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग द एक्शंस और ओमिशंस ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट फॉर कंसिडरेशन बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। आई थिंक आई मस्ट अपील दैट द ऑफिस ऑफ अ गवर्नर इज अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। द गवर्नर्स मस्ट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन so that this kind of litigation before the law courts reduce. It is quite embarrassing for the governors to be told to do a thing or told not to do a thing, and hence the time has come that where they would be now told, I suppose, to discharge their duties in accordance with the constitution.
न्यायमूर्ति नागरत्ना की यह टिप्पणी तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और पंजाब के राज्यपालों के कृत्यों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने की पृष्ठभूमि में आई है। तो ये थे अभी तक के समाचार। नमस्कार।